एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सोच और समाज को देखने के एक ऐसे नज़रिए को समझने वाले हैं जिसने पिछली आधी सदी में, आप कह सकते हैं, मानवीकी और सामाजिक विज्ञानों में काफ़ी हलचल मचाई है। उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म।
हाँ।
और इस सफ़र में हमारी गाइड होंगी कैथरीन बेल्सी और उनकी इस विषय पर लिखी अहम किताबें। खासकर उनकी एक किताब है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
बिल्कुल। और ये देखिए, कोई ऐसा नहीं कि पुराना अकादेमिक सा विषय हो, ये आज भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये उन बिल्कुल बुनियादी बातों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस सच मानकर चलते हैं।
जैसे
कि भाई, भाषा कैसे काम करती है, हम चीज़ों का मतलब कैसे निकालते हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है और जिसे हम सच कहते हैं वो आखिर है क्या। मतलब ये हमारे कॉमन सेंस को सीधी चुनौती देता है।
अच्छा, तो पहले ये बताइए, ये कैथरीन बेल्सी कौन थी जिनका काम हम देख रहे हैं?
कैथरीन बेल्सी ब्रिटेन की एक बहुत ही जानी मानी साहित्यिक सिद्धांतकार और सांस्कृतिक आलोचक थी। अफसोस, हाल ही में 2021 में उनका निधन हुआ।
ओहो।
हाँ, वो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस थी और उन्होंने दशकों तक क्रिटिकल थ्योरी पर काम किया। उनका खास ध्यान उत्तर संरचनावाद, नारीवाद और पुनर्जागरण साहित्य पर रहा।
और उनकी खासियत क्या थी, मतलब क्यों उन्हें इतना अहम माना जाता है?
उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद ये थी कि वो बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले विचारों को ना बहुत साफ और सरल तरीके से समझा पाती थी।
अच्छा।
और ऐसा भी नहीं कि सरलता के चक्कर में उनकी गहराई कम हो जाए। उनकी किताब थी 1980 की क्रिटिकल प्रैक्टिस, वो तो समझिए स्टूडेंट्स के लिए एक लैंडमार्क टेक्स्ट बन गई थी। कई पीढ़ियों ने उसी से ये सारे नए नज़रिए सीखे।
मतलब वो सिर्फ थियरी नहीं बताती थी, उसे इस्तेमाल करना भी सिखाती थी।
बिल्कुल, जैसे मुश्किल सिद्धांत और हमारी रोज़मर्रा की समझ के बीच एक पुल बना रही हूँ।
ये तो बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने इन विचारों को बनते हुए भी देखा होगा।
हाँ, उन्होंने फ्रांस में इनका जन्म होते देखा, फिर कैसे ये ब्रिटेन और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फैले, ये सब उन्होंने देखा। तो उनके पास एक गहरी ऐतिहासिक समझ भी थी और अकादमिक पकड़ भी। उनका मकसद इन विचारों से डराना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि ये सोचने के कितने काम के औजार हैं।
ठीक है, तो उनकी किताबें, खासकर ये वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली, ये किन के लिए हैं? क्या ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए हैं?
नहीं नहीं, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती गाइड है जो इस विषय को जानना चाहते हैं, और जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी ये एक नया साफ नज़रिया पेश करती है। बेल्सी का मकसद ही इस चुनौतीपूर्ण विचारधारा को आसान बनाना था, ये दिखाते हुए कि ये कितनी क्रांतिकारी हो सकती है।
तो उनका मूल तर्क क्या है, किस बात पे वो जोर देती हैं?
देखिए, उनका बुनियादी तर्क ये है कि पश्चिमी सोच की वो नींवें जिन्हें हम बहुत मजबूत और पक्का मानते हैं,
जैसे कि
वही शब्द सिर्फ चीजों का नाम बताते हैं, या हर इंसान के अंदर एक पक्का स्थिर मैं होता है, या फिर दुनिया एक ठोस हकीकत है जिसे हम सीधे सीधे जान सकते हैं।
हाँ, ये तो हम मानते ही हैं।
बिल्कुल। तो बेल्सी कहती हैं कि ये सब दरअसल भाषा और समाज द्वारा बनाए और टिकाए गए भ्रम हैं।
अरे, ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है।
हाँ, ये सुनने में ही चौंकाने वाला लगता है। तो किताब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहाँ ये सारी निश्चितताएं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं वो एक एक करके हिलने लगती हैं।
कहाँ से शुरू होता है ये सफर?
सफर शुरू होता है भाषा से। शब्द कैसे मतलब बनाते हैं, फिर ये आता है मैं पर, हमारी पहचान कैसे बनती है, और आखिर में ये देखता है कि इतिहास और समाज में ताकत यानी पावर कैसे काम करती है। वो दिखाती हैं कि मतलब पहचान और हकीकत की हमारी समझ असल में गढ़ी जाती है, वो पहले से तय नहीं होती।
ठीक है, तो भाषा से शुरू करते हैं। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि शब्द चीजों के नाम हैं। कुर्सी शब्द असली कुर्सी को दिखाता है ना?
हाँ, यही कॉमन सेंस है। लेकिन एक स्विस भाषाविद थे, फर्डिनेंड डी ससियोर, उन्होंने कहा कि नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। भाषा असल में संकेतों मतलब साइंस का एक सिस्टम है।
संकेत मतलब?
जैसे हर शब्द एक संकेत है, तो किसी शब्द का मतलब इसलिए नहीं होता कि वो किसी चीज से कुदरती तौर पर जुड़ा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो उस सिस्टम में मौजूद दूसरे शब्दों से अलग है।
एक मिनट, ये थोड़ा समझाइए, अलग होने का क्या मतलब?
मतलब जैसे बिल्ली शब्द का मतलब बिल्ली इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, चूहा नहीं है, मेज नहीं है। उसका अर्थ दूसरे शब्दों के साथ उसके अंतर पर टिका है, उसके फर्क पर।
अच्छा।
शब्द और उसके मतलब के बीच का रिश्ता, वो कहती है, मनमाना है, आर्बिट्रेरी है, कोई पहले से तय या कुदरती रिश्ता नहीं है। ये उस भाषा के सिस्टम के अंदर ही तय होता है। आप सोचिए, अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज के लिए कितने अलग अलग शब्द होते हैं।
हाँ, ये बात तो है। पानी, वाटर, एक्वा।
बिल्कुल। तो ये तो हुई सस्यूर की बात। फिर आते हैं जैक्स डेरिडा, जो इस बात को और आगे ले जाते हैं और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं।
वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि मतलब कभी भी पूरी तरह से मौजूद या स्थिर होता ही नहीं है। किसी एक शब्द का मतलब समझने के लिए आपको दूसरे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना?
हाँ।
मिलेंगे, फिर उनके मतलब ढूंढने पड़ेंगे, ये तो चलता ही रहेगा।
हाँ, बात तो सही है, कभी फाइनल मतलब तक तो पहुंचती नहीं।
इसी विचार के लिए डेरिडा ने एक नया शब्द गढ़ा था, डिफरेंस।
हाँ।
ये फ्रेंच के दो शब्दों का खेल है, डिफर यानी अलग होना और डिफर यानी टालना या स्थगित करना।
डिफरेंस यानी अंतर भी और टालना भी।
हाँ, मतलब ये कि अर्थ हमेशा अंतर और स्थगन के खेल में फंसा रहता है। कोई भी मतलब पूरी तरह से उसी क्षण उसी शब्द में मौजूद नहीं होता, वो हमेशा आगे टलता रहता है, दूसरे शब्दों पर निर्भर करता रहता है। तो कोई अंतिम पक्का मतलब मिलना नामुमकिन है।
बाप रे, तो भाषा एक तरह का जाल है जिससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते।
एक तरह से हाँ, डेरिडा के हिसाब से हम सीधे असली दुनिया को भाषा के बिना पकड़ ही नहीं सकते।
सोचिए जरा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब नेता या विज्ञापन वाले किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विकास या आजादी, तो उसका मतलब उतना सीधा और साफ नहीं होता जितना वो दिखाते हैं।
बिल्कुल, वो इस फिसलन का फायदा उठा सकते हैं, जानबूझकर या अनजाने में।
खैर, अगर मतलब इतना अस्थिर है तो फिर उस मैं का क्या, जो बोलता है, जो सोचता है, क्या वो स्थिर है? यहाँ बेल्सी हमें जैक्स लकांग के पास ले जाती है ना?
हाँ, जैक्स लकांग जो एक फ्रेंच मनोविश्लेषक थे। पारंपरिक सोच तो यही है कि हमारे अंदर एक पक्का समझदार मैं बैठा है जो दुनिया को देखता है और फैसले लेता है। जैसे डेकार्त ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
हाँ, ये तो बहुत फेमस है।
लेकिन लकांग कहते हैं, नहीं, ये मैं या स्व कोई अंदरूनी चीज नहीं है जो बस बाहर जाहिर होती है, बल्कि ये बाहर से बनता है, भाषा से, समाज से, दूसरों की नजरों से।
बाहर से बनता है, कैसे?
महीने का पहली बार आईने में अपना अक्स देखता है और खुद को एक पूरे शरीर के तौर पर पहचानता है, अरे ये मैं हूँ।
हाँ, बच्चे करते हैं ऐसा।
लेकिन लाकान कहते हैं कि ये पहचान एक बाहरी छवि पर टिकी है, ये एकता असल में है नहीं, ये एक तरह का भ्रम है। यहीं से हमारे अहम यानी ईगो की शुरुआत होती है, जो हमेशा दूसरों पर और बाहरी छवियों पर निर्भर रहता है।
अच्छा, और फिर भाषा का क्या रोल है?
इसके बाद बच्चा भाषा सीखता है, समाज के नियम कायदे सीखता है, जिसे लाकान सिंबॉलिक ऑर्डर या प्रतीकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जब हम मैं कहना सीखते हैं तो लाकान के अनुसार हम किसी पहले से मौजूद असली स्व को आवाज नहीं दे रहे होते।
तो फिर
हम असल में भाषा के सिस्टम में एक खाली जगह, जो मैं सर्वनाम है, उसको भर रहे होते हैं। तो हमारा चेतन मैं, जिसे हम अपना असली रूप मानते हैं, वो काफी हद तक भाषा और समाज की देन है। लकान तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भाषा को नहीं बोलते, बल्कि भाषा हमें बोलती है।
ओह, ये तो मतलब पहचान के सारे कॉन्सेप्ट को ही हिला देता है।
बिल्कुल।
तो अगर भाषा अस्थिर है, मैं भी स्थिर नहीं है, तो फिर सच्चाई या वास्तविकता का क्या? क्या वो भी ऐसी है?
इसके लिए बेल्ची हमें मिशेल फुको के पास ले जाती हैं।
हाँ।
मिशेल फुको एक और प्रभावशाली फ्रेंच विचारक। फुको का तर्क है कि जिसे हम सच या ज्ञान मानते हैं, वो कोई हमेशा से मौजूद अटल चीज नहीं है, वो किसी खास ऐतिहासिक दौर और सामाजिक ताकतों का नतीजा होता है।
मतलब सच भी बदलता रहता है।
हाँ, यहाँ विमर्श या डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। विमर्श सिर्फ बातचीत या लिखाई नहीं है, ये ज्ञान का पूरा सिस्टम है, जिसमें भाषा, नियम, संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, अदालत और हमारी आदतें सब शामिल हैं।
अच्छा।
यही विमर्श तय करता है कि किसी विषय के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है, क्या सही है और क्या गलत, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल।
और फुकों का वो मशहूर आइडिया है पावर नॉलेज का, उसका क्या मतलब है?
उसका मतलब है कि ताकत सिर्फ दबाती नहीं है, वो ज्ञान भी पैदा करती है, और वो ज्ञान फिर ताकत के रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है।
कोई उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। सोचिए कैसे इतिहास की किताबें किसी खास नजरिए से लिखी जाती हैं, जो शायद उस वक्त की सरकार या समाज के शक्तिशाली लोगों का नजरिया हो, और वही नजरिया फिर स्कूलों में सच की तरह पढ़ाया जाता है।
हाँ, ये तो होता है।
या कैसे मेडिकल साइंस तय करता है कि कौन स्वस्थ है और कौन बीमार। ये परिभाषाएं समय और समाज के साथ बदलती हैं, और इन परिभाषाओं से डॉक्टरों या मेडिकल सिस्टम को मरीजों पर एक तरह की ताकत मिलती है। तो फूको कहते हैं कि ज्ञान और शक्ति हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को बनाते और मजबूत करते हैं।
तो मतलब कोई भी ज्ञान पूरी तरह निरपेक्ष नहीं है?
फूको के हिसाब से तो नहीं। वो इतिहास को भी किसी सीधी रेखा में चलने वाली तरक्की की कहानी नहीं मानते। वो दिखाते हैं कि हमारे आज के विचार और तौर तरीके कैसे अतीत के ताकत के संघर्षों, संयोगों और भूली बिसरी घटनाओं से बने हैं। जिसे हम मानव स्वभाव या जरूरी मानते हैं, वो अक्सर ऐतिहासिक तौर पर बनाया गया होता है, न कि कुदरती।
तो ये तो काफी गहरे और सच कहूं तो थोड़े बेचैन करने वाले विचार हैं। इन सब बातों से बेलसी हमें क्या मुख्य संदेश देना चाहती हैं? क्या है वो की टेकअवेज?
हाँ, देखिए, पहला और शायद सबसे अहम संदेश है, मतलब कभी भी पक्का या स्थिर नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है, संदर्भ पर निर्भर करता है।
कोई उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से?
जैसे सोचिए घर शब्द, एक बेघर इंसान के लिए उसका मतलब क्या होगा, और एक बड़े बंगले में रहने वाले के लिए क्या, मतलब कॉन्टेक्स्ट पर कितना निर्भर करता है।
बिल्कुल। और दूसरा संदेश?
दूसरा, हमारी पहचान, हमारा स्व या जिसे अकेडमिक भाषा में व्यक्ति परकता कहते हैं, वो बनी बनाई चीज नहीं है, उसे बनाया जाता है, गढ़ा जाता है।
मतलब वो नेचुरल नहीं है?
नहीं, वो कोई कुदरती सार या एसेंस नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति, समाज की ताकतें उसे गढ़ती हैं। भारत में हम इसे जाति, लिंग, धर्म, वर्ग की पहचानों में बहुत साफ देख सकते हैं। ये पहचानें हमें समाज से मिलती हैं और हम उन्हें सीखते और निभाते हैं।
तीसरा क्या है?
तीसरा, ज्ञान कभी भी मासूम या तटस्थ नहीं होता, वो हमेशा ताकत के खेल से जुड़ा होता है। कौन तय करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, मीडिया में क्या दिखाया जाएगा? ये चुनाव ताकत के खेल का हिस्सा हैं, और ये हमारी सच्चाई की समझ को बनाते हैं।
सही कहा। चौथा?
चौथा, उन जोड़ों या द्विआधारी विरोधों पर सवाल उठाना जिनके आधार पर हम अक्सर सोचते हैं।
जैसे?
जैसे मर्द औरत, मन शरीर, सभ्य असभ्य, अपना पराया, प्रकृति संस्कृति। उत्तर संरचनावाद दिखाता है कि जोड़े न सिर्फ बनावटी हैं, बल्कि इनमें हमेशा एक को दूसरे से बेहतर या ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मर्द को औरत से, मन को शरीर से, सभ्य को असभ्य से, ये भी ताकत दिखाने का एक तरीका है।
और पांचवा?
और पांचवा, जो शायद इन सबका निचोड़ है, भाषा सिर्फ दुनिया के बारे में बताती नहीं है, वो दुनिया को बनाती भी है।
बनाती है?
हाँ। विज्ञापन हमारी इच्छाओं को गढ़ते हैं, कानून हमारे अधिकारों और अपराधों को परिभाषित करता है, राजनीतिक भाषण हमारी सोच को दिशा देते हैं, भाषा एक ताकतवर औजार है जो हकीकत को आकार देता है।
तो ये तो हुए मुख्य संदेश। क्या बेलसी की किताबों से कुछ ऐसे खास विचार या कोट्स हैं जो इन बातों को और पुख्ता करते हों?
हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे विचार हैं जो उत्तर संरचनावाद की आत्मा जैसे लगते हैं। पहला तो यही, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं, भाषा हकीकत को सिर्फ दिखाती नहीं, वो हकीकत को बनाती है।
ये तो हमने अभी डिस्कस किया।
हाँ, ये सबसे बुनियादी बात है। हम दुनिया को भाषा के चश्मे के बिना देख ही नहीं सकते।
और
दूसरा, रोलैंड बार्थ से प्रेरित एक विचार है, लेखक मर चुका है, पाठक जिंदाबाद।
इसका क्या मतलब? लेखक कैसे मर गया?
इसका मतलब ये नहीं कि लेखक होते ही नहीं, बल्कि ये कि किसी किताब या कहानी का असली मतलब लेखक के दिमाग में नहीं छिपा होता। मतलब तो तब बनता है जब पाठक उसे पढ़ता है, अपनी समझ और अनुभव से उसे जोड़ता है। हर पाठक एक नया मतलब बनाता है। ये पढ़ने के काम को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है एक तरह से।
दिलचस्प। और तीसरा?
तीसरा, डेरिडा का वो मशहूर और अक्सर गलत समझा जाने वाला कथन, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है।
हाँ, ये तो सुना है। इसका मतलब क्या, दुनिया में सिर्फ किताबें हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हम जिस भी चीज को समझते हैं, चाहे वो समाज हो, इतिहास हो या हमारी अपनी भावनाएं, हम उसे हमेशा भाषा, संकेतों और अर्थ बनाने वाले सिस्टम यानी पाठ या टेक्स्ट के व्यापक अर्थ में के जरिए ही समझते हैं। हम कभी भी सीधे बिना किसी माध्यम के असली हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। सब कुछ इंटरप्रिटेशन है।
ओके, चौथा?
चौथा फुकोस है, ताकत ज्ञान पैदा करती है। ताकत और ज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। ये याद दिलाता है कि जब भी कोई सच या तथ्य पेश किया जाए तो पूछना चाहिए कि इसके पीछे किसकी ताकत काम कर रही है, ये ज्ञान किसे फायदा पहुंचा रहा है।
ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और आखिरी
और पांचवा, लाकां से प्रेरित। इंसान या मैं या सब्जेक्ट विमर्श का स्रोत नहीं बल्कि उसका नतीजा है।
मतलब
हमारा स्व, हमारी चेतना, हमारी पहचान, ये सब भाषा और समाज के सिस्टम से पहले मौजूद नहीं थे, बल्कि उसी सिस्टम ने इन्हें पैदा किया है। ये हमारी आजादी और कंट्रोल की पारंपरिक धारणाओं पर एक गहरा सवालिया निशान है।
ठीक है, मान लिया। ये सब सुनने में बहुत बौद्धिक और अकादमिक लगता है, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का कोई फायदा है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के सेमिनार रूम तक ही सीमित है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके बहुत व्यवहारिक इस्तेमाल है, बहुत सारे।
जैसे
जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो एक सही मतलब खोजने के बजाय हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितने अलग अलग, यहाँ तक कि उल्टे मतलब निकल सकते हैं।
अच्छा।
हाँ, हम पूछ सकते हैं कि ये कहानी दुनिया के बारे में हमारी किन मान्यताओं को चुनौती देती है और किन्हें मजबूत करती है। ये विश्लेषण को ज्यादा मजेदार और गहरा बनाता है।
और शिक्षा के क्षेत्र में?
शिक्षा में तो ये बहुत उपयोगी है। ये रट्टा मारने के बजाय सवाल पूछना सिखाता है। छात्र ये समझ सकते हैं कि ज्ञान कैसे बनता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, विज्ञान के तथ्य भी कैसे समय के साथ बदलते हैं। ये हमें ज्ञान को एक प्रक्रिया की तरह देखना सिखाता है, न कि एक अंतिम उत्पाद की तरह।
और राजनीति के लिए, आजकल के माहौल में?
आज के दौर में राजनीतिक रूप से जागरूक होने के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हम नेता या मीडिया जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राष्ट्रहित, सुरक्षा, गरीबी हटाओ, सबका साथ सबका विकास, उसका विश्लेषण कर सकते हैं।
कैसे?
हम पूछ सकते हैं, ये शब्द कौन सी हकीकत गढ़ रहे हैं, इनके पीछे कौन सी मान्यताएं छिपी हैं, कहीं ये हमें हम बनाम वो के खेमों में तो नहीं बांट रहे। ये हमें प्रोपोगंडा को पहचानने में मदद करता है।
हाँ, और निजी स्तर पर भी इसका कुछ फायदा है, अपनी पहचान वगैरह के बारे में।
बिल्कुल। ये समझना कि हमारी पहचान, चाहे वो लिंग हो, जाति हो, धर्म हो या कुछ और, वो पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि समाज और भाषा ने इसे बनाया है, ये हमें बदलाव की हिम्मत देता है।
कैसे?
खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पहचान समाज के तयशुदा खांचों में फिट नहीं बैठती, ये विचार काफी मुक्तिदायक हो सकता है। ये हमें उन लेबलों पर सवाल उठाने की ताकत देता है जो हम पर चिपका दिए जाते हैं या हम खुद पर चिपका लेते हैं। ये हमें प्रयोग करने की, खुद को बदलने की संभावना देता है।
और मीडिया के बारे में क्या, जो आजकल इतना ज्यादा है?
हाँ, मीडिया लिटरेसी के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। आज जहाँ चारों तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, न्यूज, विज्ञापन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सोशल मीडिया, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ हकीकत दिखा नहीं रहे बल्कि हकीकत बना भी रहे हैं।
हर मैसेज के पीछे कोई एजेंडा होता है।
हाँ, हर मैसेज के पीछे एक नजरिया है, एक मकसद है। उत्तर संरचनावाद हमें इन संदेशों को डिकोड करने, उनके पीछे छिपे ताकत के खेल को समझने में मदद करता है। हम ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं सूचना के।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है?
मेरे ख्याल से सबसे अहम बात शायद यही है कि दुनिया, मतलब पहचान, सच, ये उतने सीधे, सरल और पक्के नहीं है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं।
इनमें हमेशा एक लचीलापन है।
हाँ, एक अस्थिरता बनी रहती है। ये चीजें बहस, बदलाव और नई व्याख्याओं के लिए हमेशा खुली रहती हैं। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है।
ये थोड़ा परेशान करने वाला नहीं लगता कि कुछ भी निश्चित नहीं है?
लग सकता है शुरू में, लेकिन ये आजादी देने वाला भी है, क्योंकि अगर चीजें बनी बनाई नहीं है, घड़ी जाती हैं, तो उन्हें बदला भी जा सकता है। जो चल रहा है वो हमेशा वैसा ही रहे, ये जरूरी नहीं। ये यथास्थिति को, स्टेटस को कुदरती या जरूरी मानने से रोकता है।
हाँ, ये तो पॉजिटिव बात है। और क्या सीखा हमने?
और ये भी कि हमें जटिलता, विरोधाभास या अस्पष्टता से घबराना नहीं चाहिए।
क्यों?
क्योंकि अक्सर वहीं पर नई सोच छुपी होती है,
जहाँ हमें लगे कि बात सीधी नहीं है या कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, वहीं रुककर गहराई से देखने का मौका है। छिपी हुई मान्यताओं को उजागर करना, यही तो आलोचनात्मक सोच है जिसे बेल्सी की किताबें बढ़ावा देती हैं।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए कोई आखिरी सवाल या सोचने की बात?
हाँ, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कैथरीन बेल्सी हमें उन चीजों पर सवाल उठाने को कहती हैं जिन्हें हम आंख मूंद कर मान लेते हैं, जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो क्या कोई ऐसी धारणा है आपकी अपनी पहचान के बारे में, समाज के बारे में या दुनिया के चलने के तरीके के बारे में, जिसे आप अब तक स्वाभाविक या निश्चित मानते आए हैं और जिस पर इस चर्चा के बाद आप दोबारा सोचना चाहेंगे? कहाँ आपको लगता है कि भाषा या समाज आपकी सोच को सीमित कर रहा है या एक खास दिशा दे रहा है?
बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।